Hare Krishna, this lecture on Bhagavad Gita, topic Who is God, given in Ames Hospital, New Delhi on 30th June 2015 by myself, Prashant Mukund Das. Mangalwar ke Ames ke karyakram mein. To aaj hum charcha karenge Bhagwan ka ek bahut hi uttam shlok, jo swayam Brahma ji dwara bola gaya. Brahma ji kaun hai, jante hain? Kaun hai Brahma ji? Ames mein job karte hain? Haan? हाँ, सृष्टि करता है ना, जेनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, गॉड बोलते हैं ना. गॉड का फुल फॉर्म है, जी इज फॉर जेनरेटर, ओ इज फॉर ऑपरेटर, डी इज फॉर डिस्ट्रॉयर. तो जेनरेटर कौन है? ब्रह्मा जी. ऑपरेटर कौन है? विष्णु जी. और डिस्ट्रॉयर कौन है? शिव जी. अभी ब्रह्मा जी अगर कोई बात बोलते हैं तो वो झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं? सच बोलते हैं. पक्का? किसी को डाउट है? एनीबडी, किसी को शक है कि ब्रह्मा जी झूठ बोल सकते हैं? जैसे हम लोग झूठ बोलते हैं. कहां पर हैं? रेड लाइट पर हैं, होते पता नहीं कहां, 2 किलोमीटर दूर. एम्स के गेट पर हैं, 1 नंबर गेट पर हैं, दिख तो नहीं रहे. अच्छा, मैं आप 2 नंबर पे होंगे, से कंफ्यूज करते हैं आदमी को ना. लेकिन ब्रह्मा जी कंफ्यूजन नहीं कर रहे हैं. ब्रह्मा जी सच सच बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो ब्रह्मा जी हु इज द ओरिजिनल, सबसे पहले क्रिएटर हैं, जीव हैं, वो क्या बोल रहे हैं? ईश्वरम परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम. ईश्वरम परम कृष्णा. तो इसमें बहुत सारे लोगों को शक होता है कि कैसे ईश्वर कृष्ण हो सकते हैं. ईश्वर तो दुर्गा मैया भी हैं, ईश्वर तो गणेश जी भी हैं, ईश्वर तो लक्ष्मी जी भी हैं. दीपावली पे हम तो कृष्ण को याद नहीं करते, हम तो लक्ष्मी जी को याद करते हैं. तो इसका मतलब ईश्वरम परम कृष्णा का क्या अर्थ है? तो ईश्वर तो बहुत सारे हैं संसार में, है ना. एक मकान का मालिक होता है, उसको क्या बोलते हैं? मकान मालिक. तो वो भी मालिक है. तो अगर साईं बाबा बोलते हैं सबका मालिक, तो कौन सा मकान मालिक है? एम्स वाला मकान मालिक है, सफदरजंग वाला मकान मालिक है, मॉल वाला मकान मालिक है, किसकी बात कर रहे हैं वो मालिक की? हाँ जी, सृष्टि का जो मालिक है उसकी बात कर रहे हैं. और ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की रचना करी वो क्या कह रहे हैं? ईश्वरम परम परम कृष्ण. गणेश तो नहीं बोला, तो क्या झूठ बोल रहे हैं वो? तो हमें सोचना चाहिए, शास्त्र के अनुसार हमें समझना चाहिए कि भगवान कौन है, अन्यथा क्या होगा, हम गुमराह हो जाएंगे, है ना, पहुंच नहीं पाएंगे उस टारगेट तक जहां तक जाना है. जैसे बस में सवार हो जाने के लिए बॉम्बे, और बैठ जाए जब ट्रेन में, जब टिकट आया चेक करने के लिए, टीसी आए, पूछे कि वेयर इज योर टिकट, तो टिकट दिखाए, बोले अरे ये तो आप बॉम्बे का टिकट लिए हैं. हाँ हाँ, तो बॉम्बे तो जाना है. अरे ये गाड़ी तो चेन्नई जा रही है. फिर क्या होगा? उतर नहीं सकते, चलती ट्रेन में फंस जाएंगे, है ना. या फिर मेट्रो में एक स्टेशन आगे निकल जाते हैं तो फिर यू टर्न लेके आना पड़ता है. तो यू टर्न लेना पड़ेगा जीवन का, उससे अच्छा है कि पहले ही टिकट टारगेट सब कुछ फाइनलाइज करके चले, है ना. तो आप देखिए, जब कभी यात्रा पे जाना होता है, यात्रा पे जाते हैं आप लोग? शिमला, मनाली, या फिर धार्मिक यात्राओं पर, पद यात्राओं पर, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, अनेकों स्थानों पे जाते हैं. तो यात्रा का क्या अर्थ है कि हम यात्रा करते हैं तो उसकी तैयारी करते हैं. क्या क्या तैयारी करते हैं यात्रा में जाने के लिए, बताइए आप लोग? पैकिंग और रिजर्वेशन, टिकट्स और जरूरत का सामान, खाना पीना, और वहां पहुंचने के बाद रहने की व्यवस्था, कहाँ उतरेंगे, किससे मिलेंगे, टैक्सी से जाएंगे, होटल कौन सा है, अगर रिलेटिव्स हैं तो कहाँ रहते हैं, कितनी दूरी पर रहते हैं, कितना कुछ पूछते हैं एक यात्रा के लिए. लेकिन एक यात्रा है जो सबको करनी पड़ती है. कौन सी यात्रा? जीवन यात्रा. और उसके बाद में अंतिम यात्रा. तो अंतिम यात्रा सबको करनी पड़ती है. तो उस यात्रा जो अंतिम है, लास्ट, उसकी कोई तैयारी नहीं, नो प्रिपरेशंस. अभी देखिए एम्स में आप लोग तो इतने जागरूक हैं, एवरीडे मॉर्चरी में इतने लोग आते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता है. वो जब घर से निकलते हैं, अगर किसी को मालूम हो कि आज मेरा अंतिम यात्रा है तो निकलेगा? इसका मतलब डेथ कैन कम एनी टाइम. इसीलिए बोलते हैं कि बुढ़ापे से, बुढ़ापा जो है ना वो मृत्यु से पहले की सीढ़ी है. लास्ट है मृत्यु, उससे पहले की सीढ़ी बुढ़ापा. तो 1 साल का जो बच्चा है उसको क्या बोलते हैं? ही इज 1 ईयर. इसका मतलब अभी सोचिए लॉजिकली, कि मृत्यु तो उसकी भी हो सकती है। और आपने देखा है डिलीवरी होते ही कुछ बच्चे 3-4 महीने के अंदर ही सरवाइव नहीं कर पाते हैं, कुछ वोम के अंदर मदर जो माँ है उसके गर्भ में ही अपना शरीर छोड़ देते हैं, अपना प्राण छोड़ देते हैं। कुछ लोग 100 साल के भी हो जाते हैं तभी उनका प्राण निकलता नहीं है। तो अंतिम यात्रा कब है ये मालूम नहीं है, तो तैयारी करनी पड़ेगी कि नहीं। तो तैयारी करने के बाद लोग करते हैं, हमने तैयारी करी, मंदिर जाते हैं, हाँ जी जाते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हम बिल्कुल जाते हैं। तो हिंदुस्तान में रहते हैं इसका हमें बहुत ज्यादा गर्व होना चाहिए। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनू। मनुष्य जन्म पाकर राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो ये जान पूछ कर विष खाने के समान है। मतलब पता है साइनाइड है और फिर उठाकर टच कर लिया, कर सकते हैं ऐसा? बहुत मुश्किल है, इसको बोलते हैं सुसाइड, आत्महत्या। और कोई व्यक्ति अगर सच में कृष्ण का भजन नहीं करता ना तो उसने आत्मा की हत्या कर दी। वैसे तो आत्मा की कोई हत्या नहीं है क्योंकि आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। नैनम चंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न दैनम कलो दंति अपो नैनम शोषति मारुतः। इसको ना हवा से सुखाया जा सकता है, ना पानी से गीला किया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, फिर आत्मा की हत्या कैसी? आत्मा की हत्या का मतलब है उसके मूल गंतत्व तक ना पहुंचाना। आई कहां से आत्मा? कृष्ण लोक से। भगवान कहते हैं माम एव अंश जीव लोक जीव भूत सनातना, मन शिष्टानी इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करिष्यति। इस पूरे संसार में जितने भी लोग हैं, चाहे वो कुत्ता है बिल्ली है, वो सब कौन है? मेरे ही अंश हैं। अभी भगवान के हम अंश हैं, सच्चित आनंद भगवान का नाम है, ईश्वरम परम कृष्णा सत चित आनंद विग्रह। भगवान ऐसी मूर्ति है जो सत चित और आनंद की मूर्ति है। सत मतलब जो कभी समाप्त नहीं होती, एटर्नल सदा रहने वाली है ना, ये मूर्ति आज भी है और ये आपके चले जाने के बाद भी रहने वाली है ना। और कई कई मूर्तियां ऐसी मिलती हैं विग्रह भगवान के जो 5,000-5,000 साल पुराने हैं। आप वृंदावन जाएं तो वहां एक विग्रह है जिनका नाम है गरुण गोविंद देव, वो 5,000 साल से ऐसे ही विराजमान है। कितने लोग 5,000 साल में आए, गौतम बुद्ध आए चले गए, जीसस क्राइस्ट आए चले गए, मोहम्मद आए चले गए, लेकिन कृष्ण आज भी है। कुरुक्षेत्र जाएंगे तो वो वृक्ष आज भी है जहां पर कृष्ण ने भगवान की वाणी जो भगवत गीता उसको बोला, वो आज वृक्ष आज भी है। कितने वृक्ष उसके आसपास समाप्त हो गए लेकिन वो वृक्ष आज भी है। इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जब कलकत्ता से अमेरिका जाते हैं तो जिस स्थान पे बैठते हैं, टेम्पकन स्क्वायर पार्क बोलते हैं उसको, वहां पर कीर्तन करते हैं है ना, जिस पेड़ के नीचे बैठ के कीर्तन करते हैं, हाँ, वो बार्क जो ट्रीज हैं उसके अंदर लिखा हुआ है नीचे, इस्कॉन मूवमेंट हरे कृष्ण मूवमेंट स्टार्टेड बीनीथ दिस ट्री। इस पेड़ के नीचे इस्कॉन का मूवमेंट शुरू हुआ, हरे कृष्ण मूवमेंट। और उस गार्डन में आज से 50 साल पहले जितने वृक्ष थे ना वो बर्फ के कारण सब समाप्त हो गए, लेकिन वो वृक्ष जिसके नीचे श्रील प्रभुपाद बैठते थे और बोलते थे क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। वो वृक्ष आज भी है ना, तो गवर्नमेंट ने उसको सील किया है, उसके चारों तरफ पार्किंग लगाकर गार्डन में एकदम फेंसिंग लगाया और बोला है ये वृक्ष हरे कृष्ण सुनने के कारण आज तक जीवित है। मतलब एटर्नल, जो कृष्ण है वो भी एटर्नल और उनका नाम श्रवण करने वाला भी एटर्नल। बोलते ना अमर हो जाना, अमर हो जाएगा वो व्यक्ति, उसकी आत्मा शाश्वत धाम पहुंच जाएगी। और चित, चित मतलब सब कुछ का ज्ञाता, सब कुछ जानने वाला। तो भगवान से इंजीनियर भी बोलता है मैंने गाड़ी रिपेयर कर दी है बाकी आपके हाथ में, डॉक्टर बोलता है मैंने इंजेक्शन दे दिया है बाकी आपके हाथ में। इसका मतलब कृष्ण तो लॉयर का भी जानते हैं, डॉक्टर का भी जानते हैं और इंजीनियर का भी जानते हैं। तो इसका मतलब कृष्ण कैसे हैं, उनके पास सब लोगों का ज्ञान है, चाहे बीए की डिग्री हो चाहे ट्वेल्थ का बच्चा भी बोलता है हे भगवान बोर्ड में पास करा देना, 10th का बच्चा भी बोलता है और ग्रेजुएशन का भी बोलता है, लॉयर भी बोलता है, सब भगवान को बोलते हैं और भगवान सबको देते हैं। इसका मतलब उनके पास सबका ज्ञान है। तो ये चित है और आनंद, सदा आनंद में रहने वाले हैं, वो कभी दुखी नहीं रहते हैं। आप देखें भगवान कृष्ण का कोई विग्रह तो आपको कभी देख के ये नहीं लगेगा कि इसमें मुस्कुरा नहीं रहे हैं, इसके अंदर रो रहे हैं, देखा कभी ऐसा विग्रह? वो आनंद में रहते हैं। इसीलिए जब उनका जन्म भी होता है वृंदावन में गोकुल में तो क्या बोलते हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। कभी ये नहीं कहते नंद घर कृष्ण भयो या नंद घर लाला भयो, आनंद कृष्ण मीन्स रेप्लिका इक्वल इन टू आनंद, एज इट इज आनंद ही है। जैसे मिश्री का कोई खिलौना बनाओ ना मीठा, चीनी का, दीपावली पे आते हैं, उसका एक पीस तोड़ो तो भी मीठा, कान तोड़ो तो भी मीठा, उंगली तोड़ो तो भी मीठा, ऐसे कृष्ण के साथ में कुछ भी करो, चाहे उनका नाम लो, उनका दर्शन करो, उनकी कथा सुनो, एवरीथिंग इज स्वीटर एंड स्वीटर एंड स्वीटर, मीठा ही मीठा मीठा है। तो सच्ची मिठाई यही है, इसी मिठाई के कारण तो आप लोग आ जाते हैं मंगलवार को। अगर ये मीठा नहीं होता तो आप क्यों आते यहाँ पर? खट्टा होता या कड़वा होता तो बिटर एक्सपीरियंसेस जो है लाइफ में वो कोई नहीं लेना चाहता, चाहता जितनी जल्दी वो भूल जाए हमारे बुरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छी चीजें स्वादिष्ट चीजें लेना चाहता है। इसीलिए तो आप लोग आते हैं और बैठ जाते हैं एकदम अपने कर्ण अंदर खोल कर, कान खोल के कि सुनेंगे आज ये मिठास चाशनी हमारे कानों में जाएगी। तो ये कृष्ण का है, प्रभाव है। तो इस तरह ब्रह्मा जी ने बोला कि ईश्वरम परम कृष्णा, तो हमें समझना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति था, वो इंडिया आया, लॉस्ट हो गया उसका क्या वीजा, लॉस्ट हो गया, तो उसने वीजा रीअप्लाई किया, बोला मुझे वीजा रीअप्लाई करना चाहिए और पता करना चाहिए कि वापिस अपनी कंट्री कैसे जाया जाए। तो वो पहुंच गया गवर्नमेंट ऑफिस में और जाकर उसने अपना वीजा अप्लाई किया। जब वीजा अप्लाई किया तो 15 दिन निकल गया, 1 महीना निकल गया। जब भी ऑफिस में जाए तो लोग क्या करें, अखबार पढ़ें और चाय पिए और उसको बोले कल आना, कल आना। हिंदुस्तान में हमेशा सरकारी दफ्तरों में खासकर ऐसा होता है, कल आना कल आना। वो कल कब आएगा ये उनको भी नहीं पता होता, लेकिन कल आना कल आना। तो इस तरह से कल 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 करते करते बहुत दिन निकल गए और वो समझ नहीं पा रहा था कि हिंदुस्तान में इतने सारे लोगों को वीजा मिलता है, पासपोर्ट मिलता है, इलाज होता है, ट्रेनें चलती हैं, ये कैसे चलती हैं इतना सब कुछ। तो एक दिन 2 महीने बाद उसको भी कॉल आया, बोला 2 महीने बाद कि आपका वीजा तैयार हो गया है। ओ खुश हो गया, बोला चलो एटलास्ट तैयार तो हुआ, गया लेने। बोला एक बात बताइए, ये वीजा तैयार किसने किया? क्योंकि यहाँ तो सब लोग अखबार पढ़ते, चाय पीते हैं, बातें करते रहते हैं, 5 बजे का टाइम होता है तो 3 बजे ही फाइल बंद कर देते, कह रहे छुट्टी का टाइम हो गया, आते 10 बजे कहते हैं अभी तो आए हैं, अभी कैसे काम कर लें, 1 से 2 लंच टाइम हो जाता है, तो काम कब होता है यहाँ पे? तो वो व्यक्ति ने बोला भगवान भरोसे। तो बोला कि अच्छा भगवान कौन होता है? तो उसने कहा कि भगवान वो व्यक्ति है जिसके कारण ये सृष्टि चलती है, भगवान भरोसे ही तो सब कुछ होता है, हम कौन है करने वाले। तो नास्तिक था, उसने कभी भगवान का मंदिर का दर्शन नहीं किया, जानता नहीं था भगवान कौन है, पहुंच गया मंदिर में, बोला बस अब तो मुझे भगवान को जानना है कौन है भगवान। तो भी उसने कोई फिलॉसफी नहीं जाना, एक जनरली क्या किया, बस वहां पर जाकर पहुंच गया और वहां पर मंदिर के अंदर जाकर देखा कि बहुत सारे विग्रह हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोलते थे, जैसे आजकल मॉल है ना, मॉल का माहौल है, मॉल ही मॉल, मॉल ही मॉल, हर जगह मॉल। तो मॉल के अंदर क्या है, मल्टीप्लेक्स में बहुत सारा शॉपिंग करने के लिए एनवायरमेंट है, जहां जाएं वहां से आप चुन सकते हैं, है ना। स्पाइकर जीन्स का एक शोरूम है, डेनिम का एक शोरूम है, रैंगलर का एक शोरूम है, नाइकी का है, रिबॉक का है, वेरियस वेरियस ब्रांड्स, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जो जिसको पसंद होता है उसके पास जाता है, वापस आ जाता है। ऐसे आप मंदिर में भी देखें ना, तो लोग क्या करते हैं, जिस भगवान के साथ में उनका प्रेम संबंध है उसके आगे तो लेट जाएंगे, दिया जलाएंगे, मंदिर में माला करेंगे, लेकिन जो उनको मालूम नहीं है ना, उसके सामने सिर्फ ऐसे हरे कृष्णा या नतमस्तक होके निकल जाते हैं, लेकिन वो जानते नहीं है कि ये जो मार्केट है इसके अंदर रत्न है, सोना है, चांदी है, डायमंड है। तो अगर पूछा जाए ज्वेलरी शॉप में कि सोना महंगा, चांदी महंगा या डायमंड, तो कौन सा महंगा है? तो डायमंड इज द किंग ऑफ ऑल दी ऑर्नामेंट्स, है ना। तो उसी तरह से हमें मालूम होना चाहिए कि शॉपिंग सेंटर में, मंदिर के अंदर कौन डायमंड है। तो उसको मालूम नहीं था, शास्त्र भी नहीं पढ़े, तो पहुंच गया, तो देखा, सबसे पहले दर्शन करने गया तो वहां पर साईं बाबा बैठे थे, तो उसने देखा कि वो उंगली ऐसे कर रहे हैं, ऊपर लिखा सबका मालिक एक है, कह रहे ये तो मालिक नहीं हो सकते क्योंकि ये बोल रहे हैं सबका मालिक एक है, तो वो एक कौन है मुझे ढूंढना चाहिए। फिर वो आगे गया तो फिर आगे जाकर देखा गणेश जी जो है वो क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और उनके हाथ से वो धन की वर्षा हो रही है, लक्ष्मी जी भी साथ में खड़ी है, विराजमान है, और वो बैठे हुए लड्डू खा रहे हैं और उधर से धन की वर्षा भी हो रही है। तो उसने कहा ये तो लड्डू खाने में बिजी भी है और मेहनत भी कर रहा है, एक्सप्रेशन ऐसे दे रहा है कि चलो तुमने इतनी प्रार्थना करी अब ले लो, है ना, जैसे आप डॉक्टर के पास जाकर बार 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 लिखें कि भाई मेरा अपॉइंटमेंट है, मेरा कब देखेंगे, मुझे कब देखेंगे, तो एक दिन एम्स में नंबर आ ही जाता है ना, काफी दिनों तक पीछे पड़ने के बाद आपका एक दिन नंबर आएगा। तो ऐसे ही गणेश जी के पास भी बहुत प्रार्थना करिए, 4-5 दीपावली उनको खूब प्रसाद चढ़ाए, गणेश जी लक्ष्मी जी का पूजन किए, तो वे देंगे देंगे, वो थोड़ा सा दे देते हैं, तो पर उनको बहुत प्रेशर लगता है देने में। तो एक्सप्रेशन ऐसे थे कि ये आनंद में नहीं है, देने में इसको खुशी नहीं मिल रही है। फिर आगे गए तो देखा शिव जी बैठे हुए हैं, उनका परिवार है शिव पार्वती, हाँ, और वो क्या कर रहे हैं, आंखें बंद करे हुए ध्यान कर रहे हैं कि संसार कितना खराब है, इस संसार से निकालो। आप देखें शिव जी को तो ध्यानपूर्वक ध्यान करते हैं, वो किसका ध्यान करते हैं, भगवान राम का ध्यान करते हैं, है ना, भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं। तो इस प्रकार से फिर वो आगे गया तो बोला ये भी बिजी है अपने उसके अंदर। फिर दुर्गा जी के पास गया तो देखा कि दुर्गा जी शेर पे बैठी है और राक्षसों के अगेंस्ट वो भाग रही है, और काली रूप में तो उसकी जिह्वा बाहर निकल आई और एक्सप्रेशन ऐसा है कि आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये भी बिजी है, ये भी बिजी, सब व्यक्ति बिजी है। फिर वो पहुंचा राधा कृष्ण के ऑल्टर के पास में, विग्रह के पास, देखा कि एक बांसुरी बजा रहा है और दूसरी है ना सुन रही है आराम से, कोई काम ही नहीं कर रहे, आनंद में। तो बोला कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो है ना, ये सबसे आनंद में, यही भगवान हो सकते हैं। क्योंकि किसी कंपनी में जो सीईओ होता है ना, जो ओरिजिनल, वो सीईओ भी काम करता है, लेकिन जो ओनर है, मालिक जो है कंपनी का, वो कभी काम नहीं करता। आप देखें पता चलेगा, आज का है 2 दिन ऑस्ट्रेलिया है, 3 दिन अमेरिका है, मोदी जी काम कर रहे हैं कोई? तो ट्रेवलिंग करता रहता है, आनंद में रहता है वो व्यक्ति, है ना, काम करता है लेकिन उसके निरीक्षण में काम कर चलता है, वो खुद काम नहीं करता कभी भी। तो इसी तरह से कृष्ण कभी काम नहीं करते हैं, इसलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान जो है वो कौन है, कृष्ण है। तो अनेकों शास्त्रों से हम ये समझ सकते हैं, अगर आप देखें कि भागवतम में आता है, यथा तरोर मूल निशिचेनेना त्रिपयन्ति तत्स्कंद भज उपशाखा, बहुत सारी शाखाएं जो है एक पेड़ की, उसके अंदर 33 करोड़ पत्तियां हैं, और अगर आपको सारी पत्तियों को हरा भरा करना है तो जल कहाँ डालना पड़ेगा, है ना। तो बोलते हैं यथा तरोर मूल, तरोर मतलब वृक्ष, मूल मतलब जड़, निशिचेन रोज पानी डालिए, उससे क्या होगा, तृप्त्यन्ति ततः स्कंद भजो उपशाखा, जितनी भी शाखाएं हैं वो सारी तृप्त हो जाएंगी। ऐसा तो कोई नहीं है कि पेड़ की एक एक पत्ती को पकड़ ले, बोले नहीं नहीं मुझे तो ये ना ये वाला साइड अच्छा लगता है ना, हाथ में पानी का बॉटल लिया, बोले क्या कर रहे हैं, कह रहे आज पूरा पेड़ हरा भरा करके रहूंगा। तो जब तक वो वापस उस पत्ती पे आएगा ना पहली में, तब तक वो पत्ती सूख चुकी होगी या गिर चुकी होगी। तो अगर हम देखें इस संसार में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं को भजने की शक्ति इंसान के अंदर नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा अगर काउंट करेंगे ना तो 15-20 पे आप थक जाएंगे, सांस फूल जाएगी आपकी। वरुण देव, जल देवता, वृक्ष देवता, अग्निदेव, इनकी पूजा कौन कर रहा है, गौ माता। तो इतने सारे जो हैं 33 करोड़, आपको अगर लिस्ट बनाकर दे दें हम आपको भागवतम से निकाल के, तो आप घर में उसका प्रिंट आउट भी नहीं लगा पाएंगे, कॉर्नर कॉर्नर पे छोटा छोटा फोटो लगाएं तो घर खत्म हो जाएगा। तो क्या करें ऐसा इस कलयुग के लिए, जीवों के लिए। तो पार्शिव जी की जो पत्नी है कौन है, पार्वती। तो पार्वती ने पूछा कि हे शिव, आप मुझे वर्णन करें कि मैं किसका भजन करूं जिसका करने से क्या हो जाए, मुझको सारे 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न हो जाएं। तो शिव जी ने कहा क्योंकि मैं कृष्ण का, राम का बिल्कुल प्रतिनिधि हूं, तो मैं तुमको सच्चाई बताता हूं। तो पद्म पुराण के अंदर ये श्लोक आता है, कहते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समाचरेत। उन्होंने बोला आराधना नाम विष्णु, जो विष्णु आराधना है ना वो सबसे परम आराधना है। शिव जी ने बताया ये वर्णन क्या पद्म पुराण में आप देख सकते हैं, है ना, उनका भजन करना ये सबसे उत्तम है। और उसके आगे उन्होंने बोला तस्मात् परतरम देवी, और उससे भी ऊपर देवी क्या है, तदिया नाम समाचरेत। कृष्ण के साथ जुड़ी हुई वस्तुओं का भजन करने से जो आपको आनंद प्राप्त होगा वो कृष्ण के भजन से भी नहीं होगा। अच्छा क्या मतलब, मतलब ये कि विष्णु से जो तदिया, तदिया मतलब उनसे अटैच वस्तु, जैसे ये मोबाइल मेरे पास है तो ये तदिया वस्तु हो गया मेरा मोबाइल, या ये करताल तदिया वस्तु, मेरे से आज जो जुड़ी वस्तुएं हैं, तो कृष्ण के साथ जो वस्तु जुड़ी है उनका भी अगर आप भजन करेंगे तो वो विष्णु के भजन से भी ऊपर है। तो कौन सी चीजें जुड़ी हुई हैं भगवान के साथ में, गाय, गाय का भजन हो गया, और मुरली, माखन, नहीं, राधा रानी, यस राधा रानी का भजन करेंगे, है ना, और भगवान की कथाओं का। इसलिए भगवान की जो कथा होती है ना, जो भी चीज भगवान से जुड़ी है उसके आगे भगवान का नाम जुड़ जाता है, भागवतम, भगवान के साथ हुई तो भागवतम, गीता भगवान ने बोली तो हो गई भागवत गीता, भगवान के भक्त हो गए भागवत भक्त, भगवान का प्रसाद हो गया भगवत प्रसाद। तो जो चीज भगवान की होती है वो भगवान, तो इसलिए प्रसाद हो गया, हरि नाम हो गया, भगवान की कथा हो गई और भगवान के भक्त हो गए। तो शिव जी ने वर्णन किया कि अगर तुम इन लोगों का भजन करते हो तो विष्णु के भजन से भी ऊपर है। इसीलिए हमको अपने जीवन में ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो हमको ये सिखाए कि कृष्ण की सेवा कैसे करनी है। वरना ऐसे भी बहुत अनेकों गुरु हैं जो आपको क्या सिखाएंगे, कैसे अपने भविष्य को अच्छा करना है, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है। लेकिन क्या जीवन बिजनेस ग्रो करना है? पता चला आपने अपना रात दिन लगाया बिजनेस ग्रो करने में और फिर दूसरे दिन आपका शरीर समाप्त हो गया, क्या पाया? दूसरे शरीर में वो बिजनेस का रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। इफ यू स्टार्ट विद वन, आज आपने एक से शुरू किया भौतिक जीवन को और 50 पर जाकर आपका शरीर समाप्त हुआ और आप डॉक्टर थे, लॉयर थे, इंजीनियर थे, लेकिन अगले शरीर में आप फिर से बच्चे हैं और फिर क्या करना पड़ेगा? दोबारा से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। लेकिन अगर आज भजन किया और बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर आपने ये भजन किया तो इसको करने से क्या होगा? आपके मान लीजिए 50 पर मृत्यु हो गई, 50 तक पहुंचे थे, स्नेक एंड लेजर्ड होते ना, सांप सीढ़ी, 50 पर पहुंचे मृत्यु हो गई, 100 भी नहीं पहुंच पाए, तो अब क्या होगा प्रश्न उठता है। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अगर 50 तक किया है ना तो उसकी भक्ति 51 से शुरू होगी। वो ऐसे घर में जन्म लेगा शुचिनाम श्रीमताम गृहाम योगाम भ्रष्ट उपजायते। शुचिनाम पवित्र घर में, या फिर श्रीमताम, श्री मतलब पैसे वाले के घर में, ऐसे धनी परिवार में जन्म लेगा कि बचपन से उसका भजन करने के लिए टाइम मिल जाएगा उसको, उसको टेंशन नहीं होगी रोटी कमाने की। या फिर शुचिनाम ऐसे पवित्र घर में जन्म लेगा जहां बचपन से ही उसके माँ बाप क्या करेंगे, उसको बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये होगा। तो भगवान ने बोल दिया और फिर धीरे धीरे ऐसे 51 से मान लो 100 तक नहीं पहुंच पाए, 80 तक पहुंचे, तो ये धीरे 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 ग्रोथ चार्ट है, 100 तक पहुंचा देगा। इसलिए कृष्ण को समझना एक जीवन में मुश्किल है। कहते हैं बहुनान जन्म जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभम। बहुनान जन्म जन्मान्ते, एक जन्म का नहीं है। कोई बोले अरे आप तो इतने यंग हैं, हाँ हमारे से बोलते हैं आपको कैसे शास्त्र पता चल गया, तो ये एक जन्म का नहीं है, ये कई जन्मों में धीरे धीरे प्रोसेस फ्लो चार्ट ऊपर बढ़ता है और फिर एक जन्म में जाकर वो 100% पर पहुंचता है। और जब 100 पर पहुंचता है तो व्यक्ति आचार्य बन जाता है। आचार्य मतलब जिसके आचरण मात्र से लोगों के अंदर भगवान कृष्ण के लिए श्रद्धा उत्पन्न होती है, इसलिए उनको आचार्य कहते हैं ना। तो आचार्य वो नहीं होता कि ज्योतिष में हमने कुछ सीख लिया और हमने अपने आगे ले लिया आचार्य, उसके आचरण से हम क्या सीखेंगे, वो तो ज्ञान है, ज्ञानी लिख सकते हैं, लेकिन आचार्य वो है जिसके आचरण मात्र से व्यक्ति सीखे। आज हम भजन करते हैं तो ये हमारा आचरण है, हम करते हैं तभी तो आपको बोलते हैं करने के लिए, हम नहीं करें आपको बोले तो आप करेंगे? कभी नहीं करेंगे। और मान लीजिए अगर बोल भी दिया तो आपको इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा उस चीज के बोलने का, क्योंकि हम खुद ही पालन नहीं करते हैं। एक बार ऐसी एक बच्चा अपनी माँ के साथ में आया गुरु जी के पास में, और बच्चे को मीठा खाना बहुत पसंद था, और उसने आकर गुरु जी को बोला माँ ने कि हे गुरुदेव आप मेरे बच्चे को शिक्षा दीजिए कि ये मीठा खाना छोड़ दे। तो गुरु जी बोले कि देखो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आप 2 हफ्ते बाद आना। तो माता सोची कि शायद कोई अलग से मंत्र देंगे, तो वो चली गई और 2 हफ्ते बाद फिर दोबारा से आई गुरु के पास में और बोले गुरुदेव आज इसको शिक्षा दीजिए कि मीठा खाना छोड़ दे। तो गुरुदेव बोले मीठा खाना छोड़ दो। तो बोले अरे ये बात तो आप 2 हफ्ते पहले भी बोल सकते थे, आज 15 दिन बाद कोई मंत्र नहीं दिया, कुछ नहीं दिया और बोले मीठा खाना छोड़ दो। तो बोले कि माता एक्चुअली 15 दिन पहले ना मुझे भी मीठा बहुत पसंद था, तो मैंने 15 दिन प्रयास किया, मैंने 1% भी मीठा नहीं खाया और कहा कि जब मैं खा नहीं सकना के अंदर मेरी शक्ति है कि मैं नहीं खाऊंगा तभी तो मैं किसी को बोल सकता हूँ। तो ये एक्चुअली सच्चे गुरु की ये रिफ्लेक्शन है। इफ ही इज फॉलोइंग इट देन ही इज टेलिंग अदर्स। आश्रति करे प्रचार, आचरण से प्रचार करना चाहिए अपने व्यक्ति को, है ना। इसीलिए इस्कॉन संस्था एक ऐसी संस्था है जिसमें श्रील प्रभुपाद जैसे बहुत सुंदर आचार्य आए जिन्होंने आचरण भी किया और प्रचार भी किया। बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, आचरण में पता चलता है कि बंदूकें भरी हुई थी उनके गोडाउन में, असला बारूद भरा हुआ था, स्त्रियां थी बहुत सारी, तो इस तरह के जो आचरण है ये गुरु नहीं है ना। या फिर ऐसे भी बहुत सारे हैं जो भजन करते हैं, आप जाएं क्रिश्चियन कम्युनिटी में ना तो ऑल ऑफ देम आर चैंटिंग द गॉड्स नेम। वो बोलते हैं अलेलुया, प्रेज द लॉर्ड, भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, भगवान को थैंक यू बोलते हैं। रोजरी माला को रोजरी बोलते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी, और वो चप करते हैं, लेकिन उनके फादर कंपैशनेट नहीं है। उनका नाम तो है फादर, लेकिन वो कंपैशनेट नहीं है। कंपैशन का मतलब करुणामय होना। आप उनके पास जाइए और बोलिए मुझे जीवन की सच्चाई बताइए, तो कहेंगे अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। जप करो नहीं बोलेंगे, समय नहीं आया है। आप क्या करो, कन्फेशन बॉक्स में जाओ और अपने पापों के लिए क्षमा याचना करो, है ना, क्योंकि जीसस क्राइस्ट को तो हमने सूली पर ऑलरेडी चढ़ा दिया है। तुम पाप करो वो सूली भोगेंगे, तुम पाप करो वो सूली भोगेंगे। तो हर हफ्ते वो लोग पाप करते हैं, मांस मदिरा का पान करते हैं, और संडे को आकर चर्च में आकर सॉरी बोलते हैं, सॉरी फादर फॉर ऑल माई सिंस व्हाट आई हैव डन, सॉरी फादर मुझे माफ करिए मैंने जो गलत किया उसके लिए। तो फादर तो माफ कर देगा, लेकिन एक्चुअली वो दोबारा करने की प्रवृत्ति समाप्त नहीं हो रही है, तो करुणामयी नहीं है। तो ऐसा गुरु जो अपने लिए तो करता है लेकिन प्रचार नहीं करता, वो भी गलत है। तो ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो आचार भी करे, आचरण, आचार मतलब नींबू का आचार नहीं, आम का आचार, आचार मतलब आचरण करे और फिर प्रचार भी करे, लोगों को बताए करुणामयी होकर। तो ऐसे आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने अपने जीवन में खुद भी आचरण किया और दूसरों को भी उसका प्रचार किया। तो बताते हैं हमारे जीवन में किस प्रकार से ये प्रतिक्रिया चलती है। बहुत लोग पूछते हैं क्या हमारा जन्म मनुष्य शरीर में होता है, क्या हम शुरू से ही कृष्ण के भक्त बन सकते हैं पहली बार में जब हम भगवत धाम से आते हैं तो क्या होता है, ऐसे अनेकों प्रश्न लोग पूछते हैं हमसे। तो भगवत धाम से हम आते हैं क्योंकि हम भगवान से चाहते हैं कि हम भी भगवान बने, मालिक बने। तो भगवान कहता है देखो एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं, तुम मालिक बनना चाहते हो तो जाओ मृत्यु लोक में और मृत्यु लोक के मालिक बनो। कभी पत्नी के ऊपर अपनी बापत्ती दिखाओ, यू आर माय वाइफ यू हैव टू लिसन टू मी, है ना, तुम बोल नहीं सकती मेरे आगे। या फिर पत्नी को भी मालिक बनने की इच्छा है तो वो पति को दबा देती है, है ना, तो इस तरह से। या फिर ज्यादा से ज्यादा कोई नहीं मिलता तो कुत्ता जो बोल नहीं सकता उसका मालिक बन जाते हैं लोग, है ना, उसको बोले टॉमी हेयर 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 कम 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 कम, तो उसको बड़ा फील करते हैं टॉमी इतना अच्छा है, वफादार है, जहां बोलता हूं वहां चलता है। तो एक्चुअली वो टॉमी से खुश नहीं हो रहा है, अपने मालिक बनने के भाव से खुश हो रहा है वो, है ना, ही इज लिसनिंग टू मी, नोबडी लिसन्स टू मी, पर ये कुत्ता सुनता है, अरे तुम्हारी कुत्ता ही सुनता है और कोई नहीं सुनता तुम्हारा एक्चुअली। तो हमें समझना चाहिए कि सब सुने तो उसके लिए आचरण करना पड़ेगा। तो इस तरह के लोग हैं संसार के अंदर। तो बताते हैं कि आत्मा जब आती है तो सबसे पहले वो जल जीव बनती है, जल का प्राणी, मछली, मगरमच्छ, इस प्रकार के जल प्राणी बनती है। फिर धीरे धीरे जब उसका 84 लाख योनियों में से परिवर्तन होता है तो जल जीव बनने के बाद में वो बनती है क्या, थल जीव, मतलब जैसे वृक्ष, हाँ वृक्षों के अंदर भी जीवन है, है ना, इसीलिए वो बढ़ते हैं और कहते हैं ये पेड़ मर गया, ये पेड़ समाप्त हो गया, वृक्ष में भी जीवन है। तो एक डॉक्टर थे डॉक्टर बोस कलकत्ता के, उन्होंने रिसर्च किया कि पेड़ों को जब काटा जाता है तो उनमें से रोने की आवाज आती है। तो आज भी जाइए तो डॉक्टर बोस का एक म्यूजियम है, उसमें स्पीकर्स में रिकॉर्डेड वॉइस है, वृक्ष को काटो तो उन्होंने एक प्रोसीजर बनाया था, तार लगाए, स्पीकर लगाए और उसके ना रिकॉर्डिंग किया, तो पेड़ को जब काटो तो आवाज आती थी, हम रो रहे होते थे। ऐसे ही जब जानवर को काटते हैं, किसी मुर्गे के बच्चे को काट दिया तो उसको रोना नहीं आएगा, उसकी माँ नहीं रोएगी। गाय के बच्चे को काटा या गाय को काटा तो बच्चा नहीं रोएगा, इमोशंस आर देयर ऑल्सो, उनमें भी इमोशंस हैं, हम काट रहे हैं तो वो रोते हैं, लेकिन क्या करें, व्यक्ति अपनी जिह्वा के आनंद के लिए दूसरे व्यक्ति को काट देता है। ऐसे हो गया जैसे घर में एक बच्चा बोल नहीं सकता और चार भाई बोल सकते हैं, तो चार भाई ने मिलकर गूंगे वाले भाई को ब्रेकफास्ट में निपटा दिया, बोले पापा फिनिश, छोटा भाई खत्म, क्या हुआ आज ब्रेकफास्ट में ब्रेड बटर के साथ खा गए उसको, तो ठीक है, गलत है ये। ऐसे ही भगवान ने हर एक जीव को बनाया, हमारा कर्तव्य है सबको सुरक्षा प्रदान करना। ग्रस्त व्यक्ति को तो घर में छिपकली जानवर भी होना, उनके लिए प्रसाद देना चाहिए क्योंकि वो आपकी हेल्प करते हैं। अगर घर में छिपकलियां ना हो तो इंसेक्ट्स रहेंगे, है ना, और इंसेक्ट्स जो है वो कौन खाते हैं, छिपकलियां खाती हैं। तो इस तरह से अलग अलग जानवर आपकी हेल्प करते हैं। और तो हमको ये समझना चाहिए कि वृक्ष के बाद में फिर योनि आती है, उसको रेप्टाइल्स की योनि मिलती है, इंसेक्ट्स की योनि मिलती है, और इंसेक्ट्स की योनि के बाद में रेप्टाइल के बाद में वो बनते हैं क्या, चार पैर वाले जानवर, घोड़ा, बकरी, गाय, भैंस, बैल, जिराफ, कैमल। और इसके बनने के बाद में 80 लाख योनियां जब समाप्त होती हैं तो 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनियां हैं, तब उसमें भी वो धीरे धीरे प्रगति करता है। ऐसी योनियां भी हैं जहां पर लोग मनुष्य का मांस खाते हैं, है ना, चाइना में आप जाएं तो आज भी ऐसी फैमिलीज हैं, आज है मतलब ऑब्वियसली, वो क्या करते हैं, मदर वूम, मदर के वोम से जो एबॉर्टेड बच्चे होते हैं ना, एबॉर्टेड बच्चे, उन बच्चों को शोकेस में सजाते हैं, है ना, और बोलते हैं 3 महीने वाला दे दो, 4 महीने वाला दे दो, 2 महीने वाला दे दो, कच्चा मांस खाते हैं वो लोग, है ना। और साथ में एक ऐसी कम्युनिटी है जो पूरे साल क्या करती है, जिनके घर में जितने भी छिपकली कॉकरोचेज हैं उनको अपने घर में ना एक काउंटर बनाया है सेंटर में, उसमें रख देते हैं, है ना, अपने अपने घर से लाए तो डस्टबिन में नहीं डालते, मरे हुए जानवरों को कहाँ डालते हैं, एक स्थान पर डालते हैं। और पूरे साल जब वो इकट्ठा होता है सबके घरों का, तो न्यू ईयर पार्टी होती है, उसी के अंदर जो एक साल से छिपकली या कॉकरोच सड़ रहा है उसका फिर वो उसका एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, जूस के साथ में खाते हैं। तो आप देखिए, मनुष्य शरीर में आकर भी अगर ऐसा शरीर प्राप्त हुआ तो क्या फायदा। उन लोगों का सबसे फेमस जूस है जिसको बोलते हैं मंकी जूस। हाँ, आप सोचेंगे मंकी जूस मतलब मंकी की शेप में जूस होगा, नहीं, मंकी मतलब मंकी पकड़ते हैं वो बाजार से, मतलब जंगल से, है ना, और वो लोग तो चाइनीज लोग तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं ना, करके पहुंच गए, मंकी को पकड़ लिया, और मंकी को पकड़ कर क्या करते हैं, चॉपिंग नाइफ लेके उसका हेड उड़ा देते हैं ऊपर का, और डायरेक्ट उसका जो ब्लड निकल रहा है उसमें स्ट्रॉ डालकर पीते हैं, मंकी सूप बोलते हैं उसको। तो ऐसा मनुष्य शरीर भी प्राप्त हो सकता है, 4 लाख प्रकार के शरीर हैं, है ना। तो इसीलिए कहते हैं मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई ना। तो जानबूझकर आपने विष खाया तो सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पूजा मत करिए। अगर राधा कृष्ण का भजन नहीं करेंगे तो ये मनुष्य शरीर ऐसे ही छूट जाएगा, और अगला शरीर क्या मिलेगा मालूम नहीं है। हाँ जी, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म या पूर्व जन्म। तो पूर्व जन्म यही है कि आपके कर्मों के अनुसार आपको दूसरा शरीर मिलता है।
कैसे याद रहता है कि पहले क्या था और नेक्स्ट
टाइम? सबको याद नहीं रहता है, भगवान ने हाँ रियलिटी होती है, पुनर्जन्म होता है व्यक्ति का, हो सकता है और पुनर्जन्म हो ही रहा है। इसी के कारण तो आप देखिए, जब छोटा सा कोई बच्चा पैदा होता है कहते हैं इधर के कर्मों का भोग इधर ही भोगना पड़ता है, लेकिन जब कोई छोटा बच्चा पैदा होता है, किसी की आंख नहीं है, हाथ नहीं है, पैरालाइज्ड है, तो बोलते हैं ओहो इसके पूर्व जन्मों का कर्म है, तुरंत निकलता है मुझसे। क्यों, कौन सा कर्म किया जिसके कारण ऐसी स्थिति में पहुंचा? शिला प्रभुपाद जी से भक्त पूछते थे, ये जो रोड पे भिखारी हैं ये भिखारी क्यों हैं? तो प्रभुपाद बोलते थे मिस यूटिलाइजेशन ऑफ द फ्री विल, अपनी आजादी का मिस यूटिलाइजेशन कर ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं। जैसे बच्चा है, आपने उसको आजादी दी है, बुक्स भी दी है कि बेटा पढ़ाई करो और क्या बनो, अच्छे बच्चे बनो। अब उसके पास आजादी है, वो कॉमिक्स भी पढ़ सकता है और वो बुक्स भी पढ़ सकता है, एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की पढ़ेगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे, कॉमिक्स पढ़ेगा तो बुरे मार्क्स आएंगे। तो अपनी आजादी का मिस यूटिलाइजेशन कर हमें दूसरा शरीर रिजल्ट प्राप्त होता है। तो इसी के कारण इसको बोलते हैं कि पुनर्जन्म या फिर पूर्व जन्म, अपना पुराना जन्म और नया जन्म हमको मिलता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि मनुष्य है तो मनुष्य में ही जाएगा, मनुष्य होकर वो जानवर में अधो योनि में भी जा सकता है, और ऊर्ध्व योनि इंद्र भी बन सकता है, ब्रह्मा भी बन सकता है। लेकिन कहते हैं ब्रह्म लोक तक जाने के बाद भी व्यक्ति को मृत्यु लोक में आना पड़ता है। ये एफडी के अनुसार है, आपने 2 लाख रुपए एफडी में जमा किए और अमेरिका चले गए, जितनी जितनी जरूरत होगी निकलता रहेगा, और फिर एक साल बाद, एक महीने बाद जितना खर्चा कर लिया एफडी का अमाउंट खत्म, तो वापस इंडिया आना पड़ेगा अपना पैसा जमा करने के लिए। तो मृत्यु लोग ही है वो स्थान है जहां पर आप अपनी एफडी बना सकते हैं। इसीलिए ब्रह्मा हो चाहे विष्णु, ब्रह्मा हो इंद्र हो, सभी देवी देवता चाहते हैं कि अगर भजन करने के लिए कोई अच्छा स्थान है तो वो कौन सा है? दुखालयम अशाश्वतम, मृत्यु लोक। इस संसार में इतना दुख है कि दुख में व्यक्ति को भगवान का भजन करने की इच्छा उपलब्ध होती है। अभी आपके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मकान हो, टेंशन ना हो पैसा कमाने की, हाँ, और घर में खाना आ जाए, ताली बजाएं तो सब कुछ मिल जाए, ऐसी स्थिति में, और आपको उड़ना ट्रैफिक जाम ना मिले, उड़ सकते हो आप अपनी इच्छा से, मन की गति से आप यहाँ से अमेरिका, अमेरिका से यहाँ, तो सारे अमेरिका में मिलेंगे, एम्स खाली हो जाएगा, तो मतलब फिर मन की गति से चल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भगवान का भजन करेगा? इसीलिए बोलते हैं ब्रह्मा जी भी कि मैं चाहता हूं कि कहां मैं आऊं इस मृत्यु लोक में, तो वो आते हैं वृंदावन में, एक पर्वत है जिसका नाम है ब्रह्म पर्वत, बरसाना जिसे बोलते हैं ना, चतुर्मुखी रूप में वो ब्रह्म पर्वत है। विष्णु रूप में पर्वत बनते हैं गोवर्धन, और शिव रूप में बनते हैं नंदीश्वर, हाँ, जिसके ऊपर नंद गांव बसा हुआ है। तो इस प्रकार से भगवान स्वयं मृत्यु लोक में आते हैं, पर्वत बना दो चाहे कुछ भी बना दो, लेकिन एक योनि मृत्यु लोक में दे दो, यही पे भजन किया जा सकता है, और कोई स्थिति नहीं है। इसीलिए ब्रह्म संहिता जो स्वयं ब्रह्मा जी ने बोली उसमें आप पढ़ेंगे तो वो क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, सुनिए। ब्रह्मा जी बोलते हैं, जिन्होंने श्री राम श्री नरसिंह वामन इत्यादि विग्रहों में नियत संख्या की कला रूप में स्थित रहकर जगत में विभिन्न अवतार लिए, परंतु जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वयं प्रकट हुए, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण का भजन क्यों करता हूँ? उन्होंने क्या किया? राम नरसिंह वामन इत्यादि विग्रहों में नियत संख्या की कला रूप में स्थित रहकर जगत में विभिन्न अवतार लिए। तो भगवान कृष्ण अवतार ले रहे हैं, विष्णु के रूप में हो, चाहे राम के रूप में हो, चाहे नरसिंह के रूप में हो। फिर लिख रहे हैं ब्रह्मा जी, उन आदि पुरुष भगवान जो स्वयं श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, स्वयं है वो जो कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, उन गोविंद का मैं भजन करता हूँ। आगे कहते हैं, जिन्होंने गोलोक नाम अपने सर्वोपरि धाम में रहते हुए उसके नीचे स्थित क्रमशः वैकुंठ लोक, महेश लोक, देवी लोक नामक विभिन्न स्वामियों को यथायोग अधिकार प्रदान किया है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो यहाँ पर बोलते हैं कि वैकुंठ धाम, कृष्ण लोक के नीचे वैकुंठ लोक, वैकुंठ लोक के नीचे महेश लोक, और महेश लोक के नीचे देवी लोक, जिसे इसमें हम रहते हैं, देवी लोक है ये। इसमें इसकी जो देवी है वो दुर्गा है, क्योंकि इस स्थान का नाम है दुर्ग और इसकी देवी है दुर्गा। दुर्ग मतलब किला, किले की रक्षा करने वाली दुर्गा। दुर्गा देवी के ऊपर है महेश धाम, महेश धाम में मतलब शिवजी हेड होते हैं, और महेश धाम के ऊपर है वैकुंठ धाम, उसमें विष्णु हेड होते हैं, और विष्णु धाम के ऊपर सर्वोपरि धाम है गोलोक धाम, जहां पर स्वयं कृष्ण रहते हैं। तो हम जो चर्चा करते हैं हरे कृष्ण भजने की, इसको भजने से व्यक्ति न देवी धाम में रुकता है, सीधा उसका एस्केलेटर लिफ्ट लगता है, सीधा गोलोक धाम में। हाँ, सीढ़ी सीढ़ी करके जाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है कि चलो अभी कर लो, बोल महापुरा दे, पूरी कर दे, हलवा बांटेंगे, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, तो फिर जाएंगे अभी देवी धाम में, उसके बाद फिर ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंध महेश धाम, फिर विष्णु 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 सहस्त्र नाम वैकुंठ लोक। लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सीधा लिफ्ट मिलेगा आपको ऊपर जाने के लिए। तो अभी गाना भी आता है ना, मुझे तो तू लिफ्ट करा दे, गाना आता था ना, मुझे याद नहीं क्या गाना था, ऐसी तो तू क्या कर दे, मुझे लिफ्ट करा दे, जो भी था। तो लिफ्ट करा दे मतलब खुदा ऐसा कर दे मुझे कि सीधा डायरेक्ट अपने धाम में बुला ले, तो उसके लिए हरि नाम लेना पड़ेगा। और फिर जब मनुष्य शरीर मिलता है व्यक्ति को, तो उसके बाद डायरेक्ट वो कृष्ण के पास नहीं जाता है। कहते हैं सबसे पहले वो नास्तिक होता है, भगवान में विश्वास ही नहीं करेगा। तो कोई मिले ना तो डरिएगा मत, वो उसकी पहली योनि है मनुष्य की, नास्तिक है वो। उसके बाद जब वो आगे बढ़ता है, शास्त्र वर्णन है, हमारा अपना मन का बात नहीं है, तो शास्त्र वर्णन क्या है कि अगले जन्म में वो सूर्य उपासक होगा। जो सूरज को जल देते हैं लोग, उन्हें समझ लेना चाहिए, अगर आपकी सूर्य पे श्रद्धा है तो इसका मतलब आप अभी सेकंड योनि में हैं, क्योंकि ब्रह्म संहिता में लिखा है, कहते हैं यक्षरेषु सवितां सकल ग्रहणां राजा समस्त मूर्तिर शेष तेजम यस्या गया भ्रमति समृत काल चक्रम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। उसमें बोलते हैं कि जो ये जो सूर्य है ना, हाँ, समस्त ग्रहों के अधिपति अनंत तेज से पूर्ण समस्त देवताओं के प्रतीक सूर्य जो है वो भगवान के नेत्र हैं, और उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ जिनकी आज्ञा से सूर्य काल चक्र पर चढ़कर भ्रमण करते रहते हैं। भगवान कृष्ण की आज्ञा से काल चक्र पर चढ़कर, समय के चक्र पर चढ़कर सूरज चलता रहता है, दिन रात सूरज रहता है लेकिन हम समाप्त हो जाते हैं, तो ये सूरज चल रहा है। तो ये सूर्य की जो पूजा करते हैं वो गोविंद को भूल जाते हैं, वो सोचते नहीं है कि गोविंद परम भगवान है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट योनि जब मिलती है तो सूर्य देव उनको अपलिफ्ट करते हैं थोड़ा सा, और फिर वो किसकी भजन करते हैं? गणेश जी का भजन करते हैं, है ना, महाराष्ट्र में जैसे है गणपति बप्पा मोरिया चार लड्डू चोरिया, है ना। तो गणेश जी का भजन करते हैं, अपने घर में चार दिन के लिए गणेश जी रखते हैं, बहुत लोग मिलते हैं, क्या है आपके घर में अभी गणपति उत्सव चल रहा है, उत्सव गणपति उत्सव, और चौथे दिन गणपति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, हाँ उनकी सूंड और हाथ कहाँ है वो गणेश जी को भी नहीं मालूम पड़ता। ऐसे एक व्यक्ति था, वो पूरा जीवन गणेश जी का बहुत भजन किया, हर बार गणपति को विसर्जन करता तो बहुत नृत्य करता, गणपति बप्पा जय, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा आइला, गणपति बप्पा आइला, ऐसे करके खूब नाचता था। एक बार वो समुद्र स्नान कर रहा था और लहरें आई, खुद ही समुद्र में मतलब डूबने लगा। जब डूब रहा था तो अपने अधिष्ठाते ईश्वर गणेश को पुकारा, हे गणेश मेरी रक्षा करो, गणेश मेरी रक्षा करो। तो फिर क्या हुआ, गणेश जी आए लेकिन नृत्य करने लगे, हाँ कह रहा है बचाओ मैं मर जाऊंगा, नृत्य मत करो। तो फिर भी गणेश जी नाचे जा रहे हैं ऐसे ना, नाचे जा रहे हैं, तो बोले अरे नाच रहे हो मुझे बचाओ। तो बोले हर साल तुम मुझे डुबो डुबो के नाचते थे तब कुछ नहीं, आज एक बार डुबोया तो मालूम पड़ गया। तो ऐसे ही है हमारा जीवन भी ना, हमें समझना चाहिए कि किसकी क्या स्थिति है। देखिए ब्रह्मा जी क्या लिखते हैं गणेश जी के बारे में, वो कहते हैं कि जो गणेश जी हैं उनके कंधों पर सदा भगवान कृष्ण के चरण विराजमान रहते हैं। उनके कंधों पर सदा भगवान के चरण विराजमान रहते हैं, गणेश जी के कंधों के ऊपर है ना। और वो गुरु मानते हैं नरसिंह भगवान को। गणेश जी विघ्न हर्ता हैं भौतिक जगत के, लेकिन आध्यात्मिक जगत के विघ्न हर्ता कौन है? स्वयं नरसिंह भगवान है। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जगत का पालन करने वाले जो है, रक्षा करने वाले वो कौन है? गणेश जी है, नरसिंह भगवान है। कहते हैं यद पाद पल्लव युगम विंध्य कुंभ द्वंद्व प्रणाम समय सा गंधिराज विघम विनंतुम अलम अस्य जगत त्रस्य गोविंद मादि पुरुषम तम अहम भजामि। तो भगवान गणेश जी के बारे में बोल रहे हैं ब्रह्मा जी कि मैं गणेश जी तो स्वयं भगवान कृष्ण से प्राप्त करते हैं सारी शक्ति, तो शक्ति की पूजा करें या शक्तिमान की पूजा करें, है ना। शक्तिमान वो वाला नहीं जो घूमता है टेलीविजन में, शक्तिमान मतलब स्वयं कृष्ण, इनकी पूजा करें तो हम प्रसन्न रह सकते हैं। फिर गणेश की पूजा करने के बाद जब कोई सही तरीके से गणेश की पूजा करता है तो उसको गणेश जी अपलिफ्ट करते हैं और कहां पहुंचा देते हैं? नहीं, अपनी माँ, हाँ, दुर्गा के पास, पार्वती के पास। कहते हैं मम्मी मम्मी, हाँ, नो मी ओनली मम्मी। तो मम्मी के पास जाते हैं तो फिर मम्मी के पास लोग भजन करते हैं, है ना। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटेंगे, माँ मुराद पूरी नहीं करे तो नहीं बांटेंगे, बिजनेस करते हैं उनके साथ में, है ना। तो जब इस प्रकार का खूब वो भजन करते हैं, नवरात्र रखते हैं 9 दिन तक हमारे घर में लेसन प्याज ना 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 ना। और जैसे ही नवरात्रि का आखिरी दिन होता है ना तो लोग अल्कोहल भी लेते हैं और उसमें से बोलते हैं जय माता दी जय माता दी जय माता दी। 9 दिन तक देवी थी मृत, हाँ, उसके बाद वो कहाँ पलायन कर गए? देवी तो मतलब सत्य है ना, हमेशा रहने वाली है, इस दुर्ग की मालकिन है देवी। उसको वैसे तो देवी मैया, मेरी मैया, मेरी मैया, वो मैया को भूल गए 9 दिन के बाद में। हाँ, उसे हमेशा याद तो रखो, खुद अपना एसी में सोते हैं और मैया के ऊपर छिपकलियां घूमती है। हाँ, तो ध्यान देना चाहिए कि अगर हम माँ की सेवा भी ढंग से नहीं कर रहे तो पिता तक जाना तो बहुत ही मुश्किल है। तो फिर मैया की सेवा करने पर मैया उनको अपलिफ्ट करती है, कहाँ ले जाती है? महेश्वर, अपने पतिदेव कि मैं नहीं मेरे पतिदेव स्वयं शिव की आराधना करिए, तो फिर व्यक्ति शिव का उपासक बनता है। लेकिन नकली उपासक नहीं, असली उपासक बनना चाहिए। जैसे निकलते हैं ना, यात्रा निकलती है अभी, कौन सी, कंधे पे वो पानी लेकर, कांवड़ यात्रा, उसमें अनेकों प्रकार के भजन सुनने को मिलेंगे जो फिल्मों से चुराए गए हैं, है ना। उसमें भगवान का नाम शायद ही कभी आता हो। एक व्यक्ति तो हमको मिलते हैं, वो लेबर है किसी फैक्ट्री में, तो वो ऑरेंज कलर का कपड़ा डाई कराते हैं हर 4 महीने के लिए और कहते हैं प्रभु जी इसके अंदर बड़ा आनंद आता है। मैंने कहा क्यों, भगवान का भजन करने से? कह रहे नहीं, भजन वजन तो हम नहीं करते हैं, सिर्फ कपड़ा रंग कर कांवड़ के जो कैंप होते हैं उसमें फ्री प्रसादम बहुत मिलता है। तो देखिए क्या क्या चेतना है उनकी, है ना। तो लोग फ्री प्रसादम के कारण और इसी कारण से वो चलते हैं। और आप देखेंगे रोड के ऊपर एक्सीडेंट्स बहुत करते हैं वो लोग, ना नाचेंगे, जोर जोर से शोर मचाएंगे, वो एक्चुअली शिव उपासना नहीं है। अगर कोई शिव की सच्ची उपासना करेगा तो शिव जी स्वयं उस व्यक्ति को क्या प्रदान करते हैं? कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। ठीक है, समय हो गया है, पर्ची आ गई है, तो हम समाप्त करेंगे यहीं पर ही। हाँ, पर्ची आ गई है, प्लीज ओवर, गेम ओवर। तो उस तरह से, हाँ ठीक है, अभी बोलते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने, शिवजी ने क्या बोला, पार्वती पूछती हैं कि शिवजी हमें करना क्या चाहिए, तो शिवजी बोलते हैं सुनो उमा ये अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सच्चाई क्या है? हरि भजन, और जगत क्या है? सपना है। तो आप देखिए किस प्रकार से जीव आत्मा भगवान के धाम से अगर क्रम 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 करके धीरे 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 बढ़ती है। और अभी भगवान ने आपको भाग्यशाली समझा, इसी के कारण आप भगवान के नाम से जुड़ पाए हैं। तो आप अपने जीवन में मृत्यु आ जाए बड़े से बड़ा ऑब्स्टेकल आ जाए लेकिन हरि नाम नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। भगवान ने बोला तदिया नाम समाचरेत, सब मेरे जो वस्तुओं में सबसे इंपॉर्टेंट है तदिया नाम, मेरा जो नाम है उसका जो भजन करेगा वो विष्णु आराधना से भी बढ़कर है। इसलिए आप लोग वापिस जाएं और अब 14 जुलाई को वापिस आए, 14 जुलाई को अगला प्रवचन होगा, है ना। और बोलते रहिए 15 दिन तक लगातार, क्या हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की।